नमस्कार, 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी मुंबई के एफएम गोल्ड प्रसारण सेवा में आपका स्वागत है। कार्यक्रम शूलो आसमान में आज आपसे रूबरू होंगे महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के प्रेसिडेंट श्री संतोष मंडलेचा। इनसे बातचीत करेंगे नजारा टेक्नोलॉजीज के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं चेयरमैन, इंडिया बिजनेस ग्रुप के प्रेसिडेंट विकास मित्तरसेन।
मेरे साथ आज हैं संतोष मंडलेचा जी, ये हैं प्रेसिडेंट महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स। और बहुत चीजें हैं लेकिन अभी अपने एक एक करके उस पर जाएंगे। वेलकम संतोष जी, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।
थैंक यू।
आप महाराष्ट्र चेंबर जो है ये एग्जैक्टली क्या है, और पूरा महाराष्ट्र का है, सिर्फ बॉम्बे का है, क्या एग्जैक्टली करते हैं?
विकास जी, सबसे पहले तो मैं सब लिस्नर को नमस्कार कहना चाहूंगा। महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, यह संस्था 1927 में प्री इंडिपेंडेंस के पहले इस संस्था की स्थापना हुई है, और इस संस्था की जो स्थापना की गई है वो एक ग्रेट विजनरी सेठ वालचंद हीराचंद, इन्होंने इस संस्था की स्थापना की। प्री इंडिपेंडेंस से पहले जब अंग्रेज राज था तब व्यापारियों को और उद्यमियों को काम करना बहुत कठिन था, तो उनके सामने काम करने के लिए संगठित होना जरूरी था, और उस उद्देश्य से इस संस्था का निर्माण किया गया है।
ये तो बहुत अच्छी हिस्ट्री बताई आपने। वालचंद कॉलेज में तो मैं खुद पढ़ा हूँ सांगली में, मुझे नहीं पता था कि वालचंद जी खुद मतलब इसके ना अध्यक्ष हैं।
हाँ, वो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं।
तो एग्रीकल्चर क्यों जुड़ गया इसमें? नॉर्मली जितने चेंबर रहते हैं ये तो सब इंडस्ट्री के रहते हैं
जी,
या एक्सपोर्ट्स के रहते हैं, या सम पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल सेक्टर के रहते हैं, तो ये इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर तो फर्स्ट टाइम देखा है हमने।
बहुत अच्छा सवाल आपने किया है विकास जी। आपने जैसे बताया कि सारे चेंबर्स जो होते हैं वो ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए होते हैं।
यस।
जब कोई चीज बनती है वो इंडस्ट्री में बनती है, और वो इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट जो होता है वो बेसिकली ट्रेड से लिया जाता है, और वही ट्रेड रॉ मटेरियल के तौर पे जो एग्रीकल्चरिस्ट जो चीज पैदा करते हैं वो चीज इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की तरह आता है, और फाइनली इंडस्ट्री जो चीज बनाती है कंज्यूमर गुड्स, उसके कस्टमर फाइनली एग्रीकल्चर होते हैं।
ओके।
तो अगर ये देखा जाए तो अगर ये पूरा सर्कल जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक ट्रेड इंडस्ट्री और फार्मर मतलब एग्रीकल्चरिस्ट, इनका जब तक समन्वय नहीं होगा तब तक कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ सकती है, इसलिए हमारे महाराष्ट्र चेंबर ने एग्रीकल्चर को भी जोड़ लिया है।
देखा ना है रे, सोचा ना है रे, रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। देखा ना है रे, सोचा ना है रे, रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। मिट जाएंगे मर जाएंगे, काम कोई कर जाएंगे, मर के भी चैन न मिले तो जाएंगे यारों कहाँ। मिट जाएंगे मर जाएंगे, काम कोई कर जाएंगे, मर के भी चैन न मिले तो जाएंगे यारों कहाँ। देखा ना है रे, सोचा ना है रे, रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। दिल है कौन, कहा नहीं जाए, चुप जी तो कहा नहीं जाए बुलबुल है कौन कौन सही यार कुछ तो कहो मेरी जान कातिल है कौन कहा नहीं जाए चुप जी तो कहा नहीं जाए बुलबुल है कौन कौन सही यार कुछ तो कहो रे मेरी जान देखा न आए रे सोचा न आए रे रख दी निशाने पे जान कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान घर से चले खाके कसम छोड़ेंगे पीछा न हम सर पे कफन बांधे हुए आया दीवाना यहाँ घर से चले खाके कसम छोड़ेंगे पीछा न हम सर पे कफन बांधे हुए आया दीवाना यहाँ अरे
तो एग्रीकल्चर के लिए भी आप लोग कुछ रखते हैं प्रोग्राम्स और कोई सर्विसेज
एग्रीकल्चर के लिए हम लोग जो रखते हैं अभी हमारे यहाँ जैसे चेंबर में अलग अलग तरह की सब कमिटीज होती है अभी हमारे चेंबर में फूड प्रोसेसिंग के ऊपर एक कमेटी बनाई गई है क्योंकि हम चाहते हैं हम जानते हैं और हम समझते हैं कि अगर जो खेती कर रहा है जो किसान है उसको अगर हमको ऊपर लेना है उसका अगर हैंड होल्डिंग करना है तो केवल ये बातें करके नहीं होगा तो उसको शिक्षित करना जरूरी है उसकी जो पैदावार है किसान जो चीज पैदा कर रहा है उसका मूल्य जिस तरह से उसको मिलना चाहिए वो मार्केट ड्रिवन होता है अगर उसके अंदर कोई वैल्यू एडिशन की जाए तो उसका मूल्य ये फिक्स्ड हो जाता है तो इन चीजों के ऊपर महाराष्ट्र चेंबर की तरफ से हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं और हम जगह जगह जाकर पूरे महाराष्ट्र में इन किसानों को प्रशिक्षित करने का कार्य अभी हमने शुरू किया है इस तरह से हम किसान को भी समझाना चाहते हैं कि अगर आपको भी शाश्वत इनकम होनी है तो आपको भी वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा इसका प्रयास हम चेंबर के माध्यम से कर रहे हैं
वेरी गुड
और एक चीज मैं विकास जी इसमें कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी आपने पूछा कि किसानों के लिए महाराष्ट्र चेंबर क्या कर रही है हम कुछ सालों से किसानों की जो समस्या है उस समस्या को समझते हुए इस चीज को फोकस्ड किया था कि किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसके लिए हमने बहुत काम किया है इसके ऊपर हमने एक छोटी सी पुस्तिका भी प्रदर्शित की है जबकि अपने घटना में इस चीज का प्रोविजन है कि फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए और वो जो हमारा सुझाव था उस सुझाव के ऊपर इस भारत सरकार ने गौर किया है और नीति आयोग ने जो अब रिपोर्ट अब दी है गवर्नमेंट को उसमें स्पेसिफिकली इस चीज को पॉइंट आउट करके कहा है कि एक कमिटी हर डिस्ट्रिक्ट पे हर स्टेट में मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए गठित की जाए इस चीज के ऊपर अब भारत सरकार विचार कर रही है हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि महाराष्ट्र चेंबर की है
वेरी गुड एक गाना हो जाए
मुझे कुछ कहना है
मुझे भी कुछ कहना है
मुझे कुछ कहना है
मुझे भी कुछ कहना है
पहले तुम
पहले तुम
पहले तुम
पहले तुम
पहले तुम
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 देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप करते निकल गई थी उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए
अच्छा मैं कहती हूँ अक्सर कोई लड़की इस हाल में किसी लड़के से 16 साल में जो कहती है वो मुझे कहना
अक्सर कोई लड़का इस हाल में
किसी लड़की से 16वें साल में जो कहता है वो मुझे कहना है
अक्सर कोई लड़की
हाँ अक्सर कोई लड़का
कहना है
पहले तुम
लगते हैं एक तेरे बोल बस मीठे लगते हैं लिखे हैं बस तेरे सजदे इस जबी पर जिंदा हूँ मैं तेरी बस हाँ पर नहीं पर अरे कुछ न कहूँ चुप रहूँ मैं नहीं 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 पर अब मुश्किल चुप रहना है मुझे कुछ कहना है
मुझे भी कुछ कहना है
पहले तुम मिलने में जहां डर न हो कोई
पिया के सिवाय दूजा घर न हो कोई
क्या ऐसी जगह है कोई इस जमीन पर
रहने दे बात को यहां पर यहीं पर
अरे कुछ न कहूं चुप रहूं मैं नहीं 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 पर अब मुश्किल चुप रहना कहना है
अक्सर कोई लड़की
ओ अक्सर कोई लड़का
ओ अक्सर कोई लड़की इस हाल
हमारे साथ आज हैं संतोष मंडलेचा जी प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर व्हिच इज मासिया ये बताइए, आप हैं मेनली नासिक एरिया से, तो आप हर हफ्ते यहाँ पे रहते हैं दो या तीन दिन, वहाँ की इंडस्ट्री कैसे चल रही है नासिक की? ज़्यादा तो स्मॉल स्केल है।
हमारे नासिक में काफ़ी इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल ज़्यादातर है, वैसे बड़ी भी काफ़ी कंपनीज है हमारे यहाँ पर। आप जितनी भी गाड़ी महिंद्रा की देख रहे हो,
जो उनकी फैक्ट्री वहाँ है,
महिंद्रा की फैक्ट्री वहाँ पर है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स है, सीमेंस है, सीए टायर्स है, बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, फार्मास्यूटिकल बहुत दो चार बड़े बड़े यूनिट्स है, और इनके साथ बहुत सी सारी इंडस्ट्री ऐसी है कि जो बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट भी कर रही है। तो ये कुल मिला के नासिक एक अच्छा इंडस्ट्रियल बेल्ट बना हुआ है, बट मैं महाराष्ट्र चैम्बर का अध्यक्ष होने के नाते पूरे महाराष्ट्र में जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। आपको मैं बता दूं, कोल्हापुर हो गया, औरंगाबाद हो गया, नागपुर हो गया, हर जगह इंडस्ट्रियल बेल्ट्स में हमारे मेंबर्स है।
तो आप सब जगह ट्रैवल करते हैं?
जी बिल्कुल।
तो आपका काम कब करते हैं? अगर ये चैम्बर के ही काम में लगे रहते हैं
जी,
तो आपका खुद का बिजनेस कैसा चलता है?
अब ये तो ऐसा है कि आप जानते ही हो, जब सोशल काम करना होता है तो बिजनेस सैक्रिफाई तो होता ही होता है, बट वो बिजनेस सैक्रिफाई होते होते हम लोगों को इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि जिस समाज ने हमको जिस मुकाम पे पहुंचाया है, उस समाज का ऋण उतारने के लिए कुछ ना कुछ काम समाज का भी करना चाहिए। इसलिए वो दोनों चीजों को बैलेंस करते करते यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ, और आप लोगों का सहयोग, हमारे जो कस्टमर्स है उनका सहयोग, उन सबों के सहयोग की वजह से हमारा बिजनेस ग्रोथ रेट जो है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो चल रहा है, और इसीलिए हम चैम्बर में एक्टिव है।
आपके मेंबर्स कितने हैं मासिया में?
मासिया की मेंबरशिप जो है, ये हमारी दो तीन टाइप की मेंबरशिप होती है।
अच्छा।
एक तो मेंबरशिप होती है इंडिविजुअल पे, दूसरी होती है कंपनीज एंड फर्म्स, और सबसे इम्पोर्टेंट जो मेंबरशिप है वो अलग अलग ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस,
वो भी मेंबर्स,
और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर अवर मेंबर। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अराउंड 550 ट्रेड और इंडस्ट्रीज की जो एसोसिएशंस है वो हमारी मेंबर है। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इनडायरेक्टली तो हम अराउंड 7 लाख एंटरप्रेन्योर्स को महाराष्ट्र में रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया आपका।
सर ये आप जो बोल रहे, बहुत बड़ा हुआ है, तो मैं दावे के साथ आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, ये संस्था ये पूरे 90 सालों से ज्यादा काम कर रही है, और पूरे महाराष्ट्र के हर तालुका में हमारे मेंबर्स है, वहाँ के व्यापारी महासंघ हो, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस हो, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसीलिए महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स को एपेक्स चैम्बर ऑफ द स्टेट कहा जाता है।
एक गाना हो जाए।
मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने, ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी, छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी, जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे, भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। कभी कभी तो आवाज देकर मुझको जगाया ख्वाबों ने, ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने सपने।
हमारे साथ हैं संतोष मंडलेचा जी, प्रेसिडेंट महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इनके और भी बहुत पहलू हैं, हम आएंगे इसमें। मैं हूं विकास मित्रसेन, फाउंडर प्रेसिडेंट आईबीजी एंड चेयरमैन ऑफ नजारा टेक्नोलॉजीज। थोड़ा पीछे जाएंगे, आपका एजुकेशन क्या था, आप कहां करे, नासिक में ही करे एजुकेशन या कहीं और के हैं?
मेरा एजुकेशन नासिक से नजदीक एक छोटा सा तालुका है, अच्छा। चांदवड़ तालुका, वहां पर जैन लोगों का एक कॉलेज है, उसका नाम है श्री नेमिनाथ जैन ब्रह्मचारी आश्रम संचालित SNJB पॉलिटेक्निक कॉलेज। उस कॉलेज से मैंने डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स किया हुआ है।
अच्छा, वहाँ पे भी है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा?
हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
ओह वेरी गुड। फिर उसके बाद क्या करे?
एक्चुअली डिप्लोमा कम्प्लीट करने के बाद नौकरी के तलाश में इंडस्ट्रियल एरिया में हम घूमते रहे, बट आपको तो पता ही है डिप्लोमा होल्डर्स को उस वक्त नौकरी मिलना कितना मुश्किल था। तो नौकरी के प्रयास में बहुत जगह गया, नौकरी नहीं मिली, तो इसके लिए हमारे भाई का जो एक किराना दुकान था,
अच्छा,
उसमें एक साल काम किया। और मैं सब लिस्नर को एक बात कहना चाहूंगा, जब ये बात निकली है तो, कि किराना दुकान जो होती है ये ऐसी जगह होती है कि जहां पर बिजनेस का MBA सिखा जाता है। वो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि उस काम में आपके पास ग्राहक जो आता है उससे कैसे बात करनी है, उस ग्राहक को अपने साथ कैसे मेंटेन करना है, ये काम वहाँ पे मार्केटिंग का सीखा जाता है। अपने दुकान के लिए जो प्रोक्योरमेंट करनी होती है, परचेस करनी होती है, वो सबसे बेस्ट रेट में सबसे बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल अपने दुकान के लिए कैसे प्रोक्योर किया जाता है, ये परचेसिंग का आपको वहाँ पर नॉलेज मिलता है। और अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग आपके वहाँ आते हैं, अलग अलग काम से आते हैं, वो सरकारी काम से आते हैं, तो उन लोगों से कैसे डील किया जाता है, इस चीज की भी जानकारी वहाँ पर आपको मिलती है। मैं कहना चाहता हूँ
MBA ही हो गया
कि ये पूरा MBA वहाँ पे आपको सीखने को मिलता है।
एजुकेशन के अलावा आपकी बहुत एक्टिविटीज है आपके प्रोफाइल में, वो तो पूरी लिस्ट में अभी पढ़ भी नहीं सकता हूँ। यहाँ पे बहुत संस्थाओं के आप प्रेसिडेंट रह चुके हैं, कमिटी पे हैं, तो ये इसमें से मेन आपको क्या ध्यान में आता है, इम्पोर्टेंट क्या थे?
एक्चुअली आपने अभी जो बताई ये बात, तो बहुत सारी कमिटियों पे काम करने का बेनिफिट तो होता ही है। अब आपको एक छोटी सी कमिटी बता दूं कि जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है एम्पावरमेंट कमिटी फॉर MSME ऑफ RBI।
ओके, ऑफ RBI।
RBI में एक कमिटी होती है जहाँ पर MSMEs के जितने भी इश्यूज होते हैं बैंक रिलेटेड, वहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। तो इस कमिटी में महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। चार पांच सालों में मैंने इस कमिटी में बहुत काम किया है। जब भी ये मीटिंग होती है महाराष्ट्र चैम्बर की तरफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं।
एक गाना सुन ले।
सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। है वफा इस जहां को, एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना। चुरा लिया चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ले लिया दिल हाय मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना बहलाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम।
ये जो रीस्ट्रक्चरिंग की आज जो पेपर में आई है बात, ये क्या फार्मर्स लोन वेवर जैसा है या कुछ और है? ये लोन्स को रीस्ट्रक्चर करते हैं जो लोग पे नहीं कर पा रहे हैं, डिफर करते हैं?
हाँ, अभी आपने बहुत अच्छी बात बताई। एक्चुअली रीस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है कि कोई उद्यमी ऐसे स्टेज पे पहुंच जाता है, कुछ ना कुछ कारणवश
अटक जाते,
वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में आता है। और आज की जो बैंकिंग नॉर्म्स है, अगर 3 installments
नहीं पे किया
तो नॉन परफॉर्मिंग। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि अगर कोई अकाउंट, कोई उद्यमी
एनपीए में चला गया
तो उसको एनपीए से बाहर आने के लिए 100% पेमेंट करना पड़ता था, जो कि पॉसिबल ही नहीं था। और उसकी वजह से वो
स्ट्रेस
एसेट्स में जाता था और एनपीए एसेट्स बन जाती थी। तो ये रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से उसको इवेल्युएट करके एक साल का मौका दिया जाएगा और उस एक साल में वो अपने आप को इतना सशक्त कर ले कि अपने जो इंस्टॉलमेंट्स है वो रेगुलर दी जाए।
तो इसमें बैंकों को भी बहुत हेल्प होगी।
हाँ, ऑफ कोर्स होगी।
तो उनके भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो कैटेगरी है,
करेक्ट,
वो कम हो जाएगी।
बिल्कुल होगा,
ग्रेटली तो वो होगा।
नहीं, और मैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था आपको कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कोई भी इंस्टॉलमेंट भरने के लिए रेडी नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। क्योंकि अगर आप देखो, छोटा उद्यमी जो है एमएसएमई, वो हर टाइम यही प्रयास करता है कि मेरा इंस्टॉलमेंट टाइमली जाए, मैं सुकून की जिंदगी जीऊं और अच्छे से काम करूं। बट कुछ कारणवश ऐसा हो जाता है,
कैश फ्लो नहीं होता है कुछ टाइम,
बहुत सारे इश्यूज होते हैं जब इंडस्ट्री चलती है। तो आपको भी पता है, आप भी इंडस्ट्रियलिस्ट हो, तो डे टू डे एक्टिविटीज में कुछ ना कुछ इश्यूज ऐसे आते हैं कि जिसकी वजह से
कई बार तो सामने वाले का ही पैसा नहीं आता है वापस। आपने सप्लाई करा है
जी,
उसका पेमेंट नहीं आ रहा है, तो आप चले गए तकलीफ में।
हाँ, ये तो रेगुलर प्रैक्टिसेस है, बट और भी कुछ इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। बट ये सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ।
स्मॉल स्केल का अभी जो आप बात कर रहे हैं, इंडिया का क्या है, 1/3 है जीडीपी या ज्यादा है?
इंडिया का जीडीपी जो है
फ्रॉम द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री,
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जीडीपी में स्मॉल स्केल का तो हिस्सा है ही है, बट उसके बावजूद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो एमएसएमई में हाईएस्ट है। तो अगर आप देखोगे तो फाइनली वहां पर भी जो आदमी काम कर रहे हैं वो अपनी क्रय शक्ति वहां पे बढ़ा रहे हैं, और उस क्रय शक्ति से ऑटोमेटिकली जीडीपी में इनडायरेक्टली फर्क तो पड़ ही रहा है। तो हो सकता है कि कुछ आंकड़ों में जीडीपी के परसेंटेज में जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना नहीं होगा, बट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की वजह से जीडीपी में जो ग्रोथ आ रही है वो एमएसएमई से ज्यादा आ रही है, ऐसा हमको लगता है।
एक गाना सुन ले अभी।
देखने दो,
जल भी रहे हैं।
अरे तो जलने दो,
खुली सड़क है बाबा।
तो क्या हुआ भाई?
हाँ तो
हो जाए। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों,
खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों।
बायोडाटा में और प्रोफाइल में कम से कम 20 अवार्ड आपको मिले हैं मुझे जहां तक ख्याल है
जी,
उसमें से इम्पोर्टेंट क्या थे
जी,
एक
जी,
तो बताइए जो मेन है।
एक तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर जो होता है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का, वो हर साल डिस्ट्रिक्ट में जो अच्छी एक इंडस्ट्री अब ग्रोइंग इंडस्ट्री होती है उनको एक अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड मेरे को मिला था
आपके बिजनेस के लिए,
हमारे बिजनेस के लिए, क्योंकि जो प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उस प्रोडक्ट को देखते हुए और हमारे जो ग्रोथ थी, जिस तरह से हमारा डेवलपमेंट था, उसको मद्देनजर रखते हुए हमको ये अवार्ड दिया गया था। उसके बाद हमारे यहाँ पर एक दैनिक दिव्य मराठी जो भास्कर
ग्रुप
जो है उनका अवार्ड था, तो बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मेरे को मिला था। और जो अभी आपने मेरे को पूछा कि एक ऐसा कौन सा अवार्ड है कि जिसके बारे में आपको ज्यादा अच्छा लगता है, अवार्ड्स तो बहुत लोगों को मिलते हैं। वो अवार्ड्स अगर पर्टिकुलरली इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए मिला, सक्सेस के लिए मिला, ये तो आपको बहुत उदाहरण मिलेंगे। लेकिन एक अवार्ड जो था ग्लोबल कॉर्पोरेट अवार्ड न्यूयॉर्क यूएसए, इन्होंने मेरे को सम्मानित किया इस अवार्ड से, एंटरप्रेन्योर स्पिरिट ऑफ द ईयर फॉर ईयर 2012-13। तो उनका जो क्राइटेरिया था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। उन्होंने उसके साथ जो नॉमिनीज थे उसमें बहुत सारे लोग थे और इन्होंने मेरे को इसलिए इसमें सम्मानित किया क्योंकि बिजनेस के ग्रोथ के साथ साथ आपने सोशल वर्क क्या किया है, सोशल वर्क करते करते आप किस मुकाम पे पहुंचे हो, दोनों चीज को साथ साथ आपने कैसे बढ़ाया है, और उसके लिए जब सम्मान मिला तो वो एक अलग मुकाम मेरे लिए था। उसका कारण ये है कि बिजनेस में तो ग्रोथ करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक कार्य में काम करते समय अपनी ग्रोथ करना, इन दोनों चीजों को बैलेंस करने का जो महत्व है वो उन्होंने चीज को जाना और मेरे को सम्मानित किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी।
वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। एक गाना
कमाल करती हो। नियत क्यों निधान करती हो, ओ जाने मन तुम कमाल करती हो।
लास्ट में ये बताइए कि हमने कुछ पूछना अगर भूल गए हुए तो आपको कुछ और कहना है क्या, कुछ बताना है आपको, जनरल ओपिनियन ऑफ थिंग्स।
एक्चुअली बहुत सारी चीजें बातें हमने बातचीत में की है, उसके पश्चात कुछ चीजें जो मेरे को लगती है कि आज के जो नौजवान हैं जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो उनके लिए जो सुख सुविधा जो माहौल अब बना हुआ है वो बहुत अच्छा है, उस चीज को इन्होंने एक्सप्लोर करना चाहिए। जॉब ढूंढने के बजाय जॉब देने वाला कैसे बन सके, इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आज बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, योजनाएं हैं, बहुत सारे आपको कंसल्टेंट्स मिल जाएंगे, बहुत लोग आपको मदद करने के लिए तैयार है। जैसे हमारा महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, ये संस्था इसका हेड ऑफिस मुंबई में है, नासिक में इसकी ब्रांच है, और हर जगह आपको हमारे मेंबर्स मिलेंगे। ये जो भी उद्यमी बनना चाहते हैं, जो भी एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहता है, उसको हमारी संस्था अच्छी तरह से मदद करने के लिए तैयार है। इसके लिए हम सदैव प्रयत्नशील रहेंगे।
हमको और बातें काफी करनी थी लेकिन अभी टाइम खत्म हो गया है। संतोष जी, थैंक यू फॉर कमिंग
जी,
और आई एम श्योर कि हमारे जितने दर्शक हैं उनको आपकी बात बहुत बढ़िया लगी होगी।
थैंक यू धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
ये हमारे साथ थे आज संतोष मंडलेचा जी, ये हैं नासिक के और बॉम्बे के, दोनों जगह से हैं, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, और मैं हूँ विकास मित्तल सेन। थैंक यू वेरी मच,
धन्यवाद।
सावन का महीना पवन करे शोर,
सावन का महीना पवन करे शोर,
पवन करे शोर,
पवन करे शोर।
अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर,
पवन करे शोर।
हाँ जिया रारे झूमे से जैसे बन माना छे मोर, सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रारे झूमे से जैसे बन माना छे मोर, जैसे बन माना छे मो,
सावन का महीना पवन करे सोर, दिया रे झूमे ऐसे जैसे बन...
दोस्तों 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी मुंबई के एफएम गोल्ड प्रसारण सेवा में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम छूलो आसमान में महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के प्रेसिडेंट श्री संतोष मंडलेचा की बातचीत, नजारा टेक्नोलॉजीज के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं चेयरमैन इंडिया बिजनेस ग्रुप के प्रेसिडेंट विकास मित्तर सेन के साथ। अब यह कार्यक्रम समाप्त होता है। निर्मिती सहायक सृष्टि जाधव एवं कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
जाना कहाँ है पूछे नदिया की धार।